ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశ్రయాయ చక్షురుద్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణచైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ విశ్వానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతృభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పవితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ. హరే కృష్ణ. कोई भी रिविजन हो जाए पिछले क्लास में क्या चर्चा हुई थी. कोई बताएगा तीर्थ स्थानों में
निवास.
बस
बताया था कि द्वारका में अगर कोई छह महीने रह जाता है तो उसको वैकुंठ का वास मिलता है. और तीर्थ स्थान में जाना मतलब से दृश्य देखने या मंदिर का दर्शन करने में एक्चुअली वहाँ पे संग करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है. या जो भक्त है या वहाँ पे जो भक्त है उनका संग करना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना.
धाम
में
जो तीन दिन से ज्यादा नहीं रहती है, तीन दिन से ज्यादा अगर वहाँ रह जाता है तो दो दर्शन की जो है
জগন্নাথ পুরীর পূর্ণিমে নিবাস করতে অভক্ত বৈকুণ্ঠপুর
নিবাস করতে কাজ আতা
বৈকুণ্ঠ.
हमें दूसरों की श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे मेरे पीछे फॉलो करे या मैं इससे सुपीरियर हूँ. वो जहाँ भी है हमें उसको कांस्टेंट बनाए जुड़ा रखना चाहिए.
कभी वृंदावन वासियों का अपराध नहीं करना चाहिए,
उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए.
किसी से द्वेष न करने के लिए उसका गुणगान करना चाहिए.
किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था ये बात? अभी तक रिविजन होता था, अब हम रिविजन कराऊंगा. कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस कारण बोला गया था बात? क्योंकि हमें याद रहा, जब सड़क पर जाओ किसी को बोलोगे किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, बोले क्या अभी क्यों बोल रहे हो, क्या कनेक्शन है? कनेक्शन क्या है
भक्ति में आगे बढ़ने के लिए द्वेष जो
नहीं, पिछले क्लास में इसमें क्या कनेक्शन, जो धाम वहाँ से क्या कनेक्शन है
धाम से?
फिर पिछली बार बोला गया तो कुछ कनेक्शन होगा, ऐसे तो नहीं बोला.
द्वेष करेंगे तो धाम में निवास नहीं कर पाएंगे. और इसीलिए फिर था कि किसी में द्वेष नहीं देखना चाहिए.
द्वेषी व्यक्ति धाम में निवास करेगा तो सबसे द्वेष करेगा, तो धाम में नहीं धाम. और भी कॉन्टेक्स्ट था इसके साथ में, और भी कनेक्शन.
अगर अभी हम यहाँ पे द्वेष कर रहे हैं तो वृंदावन जाके भी वही कार्य करेंगे, तो द्वेष हमें यहीं से खत्म करना पड़ेगा.
पहले यहाँ पर द्वेष की भावना खत्म करेंगे तभी धाम में प्रवेश कर पाएंगे. और भी बात है इसमें,
बताया था मुझे धाम में जाने से चेतना और वासना शुद्ध हो जाती है, धाम का प्रभाव
मैंने बताया था ये स्थान भी धाम है, ये भी वृंदावन है, लेकिन अगर यहाँ द्वेष करेंगे तो वृंदावन नहीं है। इसलिए अगर इस स्थान को धाम बनाना है तो द्वेष रहित होना पड़ेगा। तो देखिए जब आप लोग लिखते हैं ना तो कॉन्टेक्स्ट में लिखा करें, उसको याद रहे क्या उसका कनेक्शन है, किस लिए बोला जा रहा है। तो आपको भी आदत बनेगी, जब जब आप कुछ बात बोलेंगे तो उसके कनेक्शन वाली जितनी चीज़ें याद आ जाएगी। ठीक है, और
एक्टिविटी
आपके कंटिन्यू होगी, आज
जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति है उसका उसी के प्रति पेट बढ़ाना चाहिए।
हाँ, कभी कभी हम लोग कैसे करते हैं अपने तरफ खींचने के लिए, क्योंकि द्वेष होता है, अपने तरफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं उसको, उसका फेद अपने तरफ बढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं कारण ऐसा होता है। और कभी कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के संग प्राप्त कर रहा है उसकी श्रद्धा उसके प्रति नहीं है तो बढ़ाना चाहिए हमारा काम। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा हमारे पास आए और बोले मेरे पापा बहुत मारते हैं, बोले हाँ तुम्हारे पापा तो है नहीं ऐसी, तो उससे क्या होगा, वो पापा से द्वेष करने लगेगा, क्योंकि रहना तो उसको पापा के साथ है ना, आप तो पालोगे नहीं, फिर आप जब नहीं पालोगे तो उसकी श्रद्धा क्यों अपने तरफ बढ़ा रहे हो। तो बोलना चाहिए पापा तो आपको कितना ख्याल रखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तुम्हें स्कूल की फीस देते हैं, तुम्हारे खिलाते हैं पिलाते हैं, बचपन में गोदी में सुलाते थे, इतना सब किया था, तो तुम्हारे पापा अच्छे नहीं है, तो बोले हाँ अच्छे तो हैं। तो इस प्रकार वापस जाकर अपने पापा पिता के प्रति क्या करे वो श्रद्धा बढ़ेगी। वैसे ही भक्तों को करना चाहिए, जो व्यक्ति जहाँ से जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है उसे श्रद्धा बढ़ानी चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। इसे क्या हुआ उसकी श्रद्धा उस व्यक्ति पर बढ़ेगी जिसे जुड़ा है और आप पर भी बढ़ जाएगी, है ना। शुरू में तो हो सकता है कि वह आप पर बढ़ जाए, बाद में समझ में आया कि इस व्यक्ति ने मेरी श्रद्धा कम कर दी उनके प्रति, तो हो सकता है आपके पूरी श्रद्धा खत्म हो जाए। जैसे कोई आपके पास मुस्लिम व्यक्ति आए और आप उसको बोलो कि आप लोग भी बहुत अच्छा करते हैं, अल्लाह का दिन रात भजन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 बार और इबादत करते हैं, शुक्रवार को जाते हैं मस्जिद, आप लोग कितने अच्छे हैं, तो बोलेगा ये सच्चा हिंदू है, यही बोलेगा ना, ये सच्चा हिंदू है क्योंकि ये हमारे धर्म का अच्छा बोल रहा है। इससे उसकी श्रद्धा उस पर भी रहेगी और हमारी पर पूरी श्रद्धा उसकी बढ़ जाएगी, यही व्यवहार है। और
जो सबसे अच्छे सेवा करता है उसको उसमें आगे करना चाहिए, अगर हम आगे नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम द्वेष कर रहे हैं,
हाँ हम भी पीछे हो जाएंगे। ये भक्ति का नियम कैसा मालूम, आप किसी को अच्छा देते हो तो आपको अच्छा मिलेगा, आप किसी गुणगान करते हो तो आपके अंदर गुण आ जाएंगे, आप किसी की निंदा करते हो तो वो अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। ये फंक्शन ऐसा है आध्यात्मिक लोग में ऐसी है, आप किसी गुणगान जो भी गुण रोज बोलते हो ना, ये बहुत अच्छा गाता है बहुत अच्छा गाता है, सब जगह ही बता रहे हो, लेकिन आप गाने लग जाओगे अपने आप आपके अंदर गुण आ जाएगा। आप बोलोगे ये कितना गंदा गाता है कितना गंदा, तो आप गाते भी हो ना तो आपका गाना खराब हो जाएगा। मैंने देखा है जो भक्त जप के दौरान ये देखते हैं कौन कौन सो रहा है और बार बार सबको उठाते रहते हैं, सो गिरो सो गिरो सो गिरो, देखो मैं कहाँ सो रहा हूँ, तो कुछ दिन बाद देखते हैं वो सोते रहते हैं, हमें देखा है ऐसे लोग। ठीक है, कौन कौन से हैं,
बिना गुरु की आज्ञा के धाम जाना, दूसरा वृंदावन वृंदा और नवदीप को
भिन्न मानना, वो एक ही है। ये कैसे पता चलेगा कि है, और भी बातें हैं। आप जाएंगे नवदीप में बराबर वहाँ मिलेंगे, जैसे हमारे नवदीप सेंटर है उसमें धीरे धीरे वन बनने लगे हैं, जैसे भाडिर वन बन गए है ना, भगुलावन बनेगा, वृंदावन और मधुबन बन चुके हैं, आपको पता है अमृतसर में 2 बेस हैं, उनका नाम है भांडिरवन और सॉरी मधुबन और वृंदावन, तो 3 वन तो आ चुके हैं, अब आएंगे 9 वन और, है ना, तो सब क्या हो जाएगा 12 वन हो जाएंगे। तो इसलिए नवदीप के अंदर जाएंगे तो 12 वन आपको मिलते हैं, जो अंतरदीप को महावन कहा गया है, अंतरदीप को कहा गया है महावन और वृंदावन, ऐसा कहा गया जाएंगे। तो जैसे माता जी ने बताया भी कि अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंदर से कृष्ण है बाहर से गौरांग भाव, चैतन्य भाव वही है, अंदर से कृष्ण ही है, गौर रंग धारण किया है, वैसे ही अंदर से वृंदावन है, बाहर से नवदीप दिखता है, इसलिए अभिन्न। और
धाम में जाके बार्गेन नहीं,
बार्गेन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर जैसे हम 5 रुपए यहाँ बचा रहे हैं, उन लोगों से हमें
कई बार ऐसा सोचते हैं कि जैसे पंडे लोग हैं परेशान कर रहे हैं, जैसे जगन्नाथपुरी के पंडे या अब जाएंगे बरसाना के पंडे, लेकिन आपने सभी सोचा है कि वो लोग इस दान के अलावा कोई धंधा नहीं करते हैं, कोई बिजनेस नहीं उनका। और अगर भी आपने देखा उन लोग बहुत ऑपुलेंस लाइफ भी जी रहे हैं, बहुत शान की जिंदगी जी रहे, नहीं सामान्य जीवन जीते हैं, वही धोती कुर्ता पहनते हैं। आप उनको 100 रुपये देते खुश हो जाते हैं, 50 रुपये में खुश हो जाते हैं, है ना। लेकिन सोचिए वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं 24 घंटे, तो ऐसा तो नहीं कर रहे ना कोई दुकान खोल रखी हो, बिजनेस हो, कोठी बना रखी हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक भवन पंडा है राधाकुंड में, मोहन प्रभु जी एक बार 3 महीने के लिए उनके घर रहने गए थे, मतलब राधाकुंड में रहने गए थे, तो क्या किराए पर रहने गए, तो बोले मैं किराया नहीं लूँगा तुमसे, तुम तो भक्त हो, भजन करने आया, किराया नहीं लूँगा। और अपने हाथ से रोटी बना के खिलाते थे उनकी माँ, और वो पैसा नहीं है कुछ, उनका घर था छोटा सा, बोले एक चारपाई है और एक थाली दूंगा बस खाने के लिए, और कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास इतना ही है, घर में कुछ नहीं है। उनके घर जाकर देखो एक चारपाई है, वो भी उन्हीं के लिए दे दिया, और नीचे सोते हैं सब परिवार, जबकि धाम आज से राधाकुंड रहने वाले, और जो देते खुश हो जाते हैं। हम लोग सोचो 200 लोग जाते हैं, एक 500 का नोट देते हैं इकट्ठा करके, खुश हो जाते हैं, खूब तारीफ करते हैं प्रभुपाद जी की, भक्ति सिद्धांत सोचे ठाकुर की। तो उन लोग कोई लोग थोड़ी क्या करें इस पे जीवित है। सोचो हम लोग यहाँ पर कोई बाहर बर्गर पिज्जा खा लेते हैं, 100 रुपये से चले जाते हैं, बड़ी करोड़पति जो रहता है वो 5 स्टार होटल में चाय पिएगा, 800 रुपये की चाय। लेकिन हम जब धाम जाते हैं तो 10 रुपये देने में तकलीफ हो जाती है। तो ये सोचना चाहिए, इसके वहाँ पर जाकर रिक्शे वाले से, पान वाले से, या जो भी दुकान वाले से क्या बार्गेन करना, कितनी महंगी वृंदावन देखो, महंगी चीज़ें नहीं मिलती, इतनी महंगी नहीं है, दिल्ली से तो महंगी नहीं कम से कम। एक धोती लेने चाहिए यहाँ पर हमारे मंदिर में चाहिए, आपको 250 रुपये मिलेगा, वहाँ पर 150 रुपये मिल जाएगी। एक कुर्ता वहाँ 150 रुपये मिलता है, यहाँ पर 250-300 रुपये कुछ नहीं मिलता। अगरबत्ती लीजिए सस्ती मिलेगी, खुशबू लीजिए सस्ती मिलेगी, है ना। फिर भी वहाँ बार्गेन कर रहे हैं, और बार्गेन करना भी है, मान लिया आपको लगता है कि पूछ लीजिए क्या से कम नहीं हो सकता, तो बोलते नहीं हो सकता, अच्छा ठीक है लीजिए बस बस। क्योंकि आध्यात्मिक वस्तु के लिए बार्गेन नहीं किया जाता, आपने सुना होगा बचपन से माँ बाप ने हमें ही सिखाया ना, आध्यात्मिक वस्तु खरीदते समय ज़्यादा बार्गेन नहीं करना चाहिए। और बहुत बड़ी चीज़ खरीदे तो अलग बात है, और मान लीजिए आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो 4 जगह देखेंगे, है ना, फिर 10 लाख की चीज़ 20 लाख बोलेंगे नहीं बार्गेन नहीं करना खरीद लो, तो ऐसे नहीं, ठीक है।
और
हाँ जिनको आप दे सकते हैं आपकी क्षमता अनुसार दे दीजिए,
दे सकते हैं भेज दीजिए।
हाँ क्यों नहीं देना चाहिए, वो देखो खा के कहाँ रहेंगे वृंदावन में। अगर वृंदावन का शराबी भी है, शराब पी के वृंदावन में रहता है, हम तो गंगा जल में पी के भी वृंदावन में नहीं है, है ना, एक नरक में रह रहे हैं दिल्ली से नमक नरक में, उसमें मेहरोली काला पानी है, नहीं वो लोग तो हम शराब पी के मान ली शराब ही पिएगा वहाँ का भिखारी है, रहेगा तो वृंदावन में पूरी जिंदगी वृंदावन रहेगा। जैसे गौर किशोरदास बाबी जी महाराज बोलते हैं वहाँ के सुअर भी हमसे ज़्यादा उन्नत है, क्योंकि मुख हमेशा ब्रज में रहता है, ब्रज में तो टच करता हो, है ना। हम लोग क्या खाते हैं यहाँ पर, धुआं यहाँ की गाड़ियों में, तो हमारे से बहुत गई भी थी। तो ये बात समझेंगे कि ब्रजवासी कैसे हैं तो हमारा मन शांत हो जाएगा, उनकी स्थिति समझ में आएगी तो अपराध नहीं होगा, ये तो अपराध पक्का है। और
भगवान से संबंध बनाना चाहिए,
सेवा से।
कौन सा मंदिर वैकुंठ
है? कौन सा मंदिर वैकुंठ है कैसे?
क्योंकि यहाँ पर इस मंदिर इस कोन में वही कार्य होते हैं जो आध्यात्मिक जगत होते हैं,
भगवान की सेवा होती है, नृत्य करते हैं, कीर्तन होता है, प्रसाद होता है, उसमें कुछ होता है, ये सब तो होता है। प्रभुपाद जी ने कहा हम नाश्ते खाते खाते गोलोकधाम चले जाएंगे, मायावादी ये बोलते रहेंगे नीति नीति नीति, संसार में कुछ नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं, है ना, सब नश्वर है सब नश्वर है। हम भक्त क्या करते हैं, सबको कृष्ण की सेवा ला के नाश्ते खाते खाते चले जाएंगे ना, तो वैकुंठ है। तो धाम प्रभुपाद जी ने बोला कि हमने सब जगह सारे स्कॉन मंदिर बनाकर धाम प्रकट कर दिए अपने। हाँ,
धाम में जाने से पहले गुरु की परमिशन लेनी जरूरी है क्योंकि वो हमारे स्तर पर जानता है कि हम वहाँ पे जाने योग्य है।
कभी कभी चेतना हमारी शुद्ध नहीं होती, हम जब धाम जाते हैं तो वहाँ अपराध करते हैं, तो चेतना शुद्ध नहीं होगी तो गुरु कभी कभी मना कर देंगे आपको।
धाम में संसारिक कार्य नहीं करने चाहिए।
जैसे टीवी देखना और अखबार पढ़ना, चाय पीना, भुवनाइजिंग करना, ये सब नहीं करना चाहिए। और धाम को मापना नहीं चाहिए, धाम है ना उसको थोड़ी नापते हैं। जैसे कोई बोले 84 कोस, बोला वो 84 कोस है, अपने नापा है धाम को, हम नाप सकते हैं ना, धाम तो अनंत है।
पहले तो ट्रांसपोर्ट की इतनी सुविधा नहीं थी, 100-200-300 साल पहले, तो उस समय जो दिल्ली के और दूसरे स्टेट के जो लोग हुआ करते थे वो धाम में निवास कैसे किया करते थे,
जाके रहते थे।
हाँ जी,
जाके जैसे माधवेंद्रपुरी कैसे गए थे जगन्नाथपुरी चंदन लेने के लिए,
घूमने के लिए वन टाइम या एक टाइम गए होंगे
नहीं। अब जैसे सनातन गोस्वामी कैसे करते थे, सनातन गोस्वामी तो रहते ही थे ना वृंदावन में,
तो
गोवर्धन में रहते थे, गोवर्धन से वृंदावन पास है, गोवर्धन के 3 परिक्रमा करते थे, कितना किलोमीटर है गोवर्धन, गोवर्धन परिक्रमा 22 किलोमीटर अभी है, उससे कम से कम 30 होगा है ना, 30 किलोमीटर का रोज परिक्रमा 3 बार करते थे,
3 बार
डेली, हम एक बार में आते हैं और 3 दिन तक सोते रहते हैं, मसाज करवा लेते हैं 5 लोग से, जब आध्यात्मिक जीवन आप जिएंगे तो बलराम जी हो संध नहीं सकती हैं, आप समझे अच्छी तरह से इसको। कृष्ण जो थे गोकुल से वृंदावन आते थे, नंदगांव से वृंदावन आते थे खेलने के लिए, गोचारण के लिए, नंदगांव कहाँ है, नंदगांव से बरसाना नंदगांव सब पास है ना, वहां से आते थे कहाँ, ठीक, और राधा रानी क्या आती थी जावट से है ना, जावट से वहां कहाँ आती थी वृंदावन, सोच के देखिए वो रोज कैसे होता होगा, कितना टाइम लगता होगा जाने आने, नहीं बलराम जी उनके साथ है, बलराम जी कौन है, सृष्टि के प्रथम सृष्टिकर्ता है, बलराम जी को संधनी शक्ति का अधिष्ठाता बताया गया, संधनी शक्ति उनसे युद्ध बुद्ध है, संधनी संवित अल्लादनी, 3 शक्तियां होती है भगवान की, तो संधनी शक्ति की सृष्टि करती है, ये चार्ट है ना, ये कहाँ गया, ये चार्ट में देखेंगे ऊपर में 3 लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है यहाँ से, बीच में ऊपर जो गुलाब ऊपर ना कंबल उसके नीचे एक ब्लैक पट्टी दिख रही छोटी सी, वो जो है उस पर उसके ऊपर लिखा हुआ है संवित शक्ति, ठीक है, इसके लेफ्ट में संधिनी शक्ति और राइट में है अल्लादनी शक्ति, अल्लादनी शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी उसके वो है अधिष्ठात्री है, अल्लादनी शक्ति है ना, अल्लाद, अल्लाद मतलब प्रसन्नता खुशी हैप्पीनेस, तो वो देने वाली कौन है, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, और संवित शक्ति के जो अधिष्ठाता है वासुदेव कृष्ण है, कृष्ण स्वयं कृष्ण नहीं, कृष्ण के विस्तार है वासुदेव कृष्ण, जो वृंदावन छोड़कर कहाँ जाते हैं, मथुरा, कृष्ण वृंदावन नहीं छोड़ते हैं, अपने विस्तार को भेजते हैं, ठीक है। और तीसरे जो है वो संधि शक्ति के अधिष्ठाता है, कौन है, बलदेव तत्व या बलराम जी, तो बलराम जी क्या करते हैं इस सृष्टि में, भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि दोनों की रचना वो करते हैं, उनकी कृपा से होता है, और जितने भी अवतार हैं वो बलराम जी तथा शंकर, शंकर संज्ञा वसुदेव कृष्ण के से मिलकर जितने भी अवतार करते हैं, महाविष्णु, उसके बाद आदि शंकर शरण, ये सब जो हैं, या सिर्फ शिव ब्रह्मा जी, जितने भी अवतार हैं, जितने 10 अवतार हैं, सब वो लेते हैं, आगे हेल्प करते हैं। ठीक है, चार्ट को समझेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है सृष्टि करने में कौन है, ब्रह्मा जी, वो है बलराम जी। बलराम जी प्रत्येक वस्तु को ध्यान रखते हैं, यहाँ घंटी है, अगरबत्ती स्टैंड है, ऑल्टर है, सब कौन है, बलराम जी हैं। तो जब आप में आध्यात्मिक शक्ति होती है आपके अंदर, तब क्या होता है, जब डिस्टेंस सब कम लगता है, जब आपका 20 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सामान लगेगा चलने में, जो जिसके अंदर आध्यात्मिक कंटेंट कम होता है, जो आध्यात्मिक रूप से कमजोर होता है, उसको भारी लगता है, चलना बड़ा दूर लगता है। तो कृष्ण को क्या कर देते थे, कृष्ण जैसे निकले वहां से नंदगांव से, ये वृंदावन ऐसा कर दिए पास में, ऐसे लगता था दौड़े और पहुंच गए, ऐसे चल के यहाँ से शॉप पर चले गए आपकी, मान लीजिए इतना ही दूर लगता था हमको। क्यों? क्योंकि कृष्ण बलराम जी तो कर सकते हैं ना, चाहे तो बलराम जी तो ऑल्टर बनते हैं, अनंत शेष में सोते भगवान, ये अनंत शेष जो ऑल्टर का बेस जो है रखने वाले, तभी तो भगवान निवास करते हैं उसमें, है ना। तो ऐसे हमारे लिए भी होता है, आध्यात्मिक भक्तों के लिए होता है, जो बहुत उन्नत है, एडवांस है भक्ति में, उनके लिए सब स्थान क्या होता है, एकदम पास हो जाता है। नहीं तो हमको लगता है कब आएगा, कब आएगा, कितना टाइम लग रहा है, बैठे बैठे दर्द हो गया बस में, कैब में दर्द हो रहा शरीर में, लेकिन आध्यात्मिक उन्नत रहेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, जल्दी आ गया। चलते हैं कई लोग, जैसे हमारे महाराज है 67 एज है, लेकिन महाराज सबसे आगे चलते हैं, 1-2 घंटे सोते हैं महाराज, लेकिन सबसे आगे चलते हैं, उनके बराबर कुछ चल नहीं सकता। जितने भक्त चलते हैं वो पीछे घबरा जाते हैं और रुक जाते हैं, थोड़ा रुको, रुकना चाहते हैं, महाराज एक बार जगह रुकते नहीं है, चलते रहते चलते 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 पूरा परिक्रमा कर लेते हैं, 3.5 घंटे में पूरी परिक्रमा गोवर्धन ही कर लेते हैं, हमें 5 घंटा लगता है, 5.5 घंटा लगता है, आप लोगों ने किया होगा ना, कितने घंटे लगे थे, 5 घंटे लगे थे, सोच कर देखो। आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा होगी, थकान नहीं हो, ऐसा लगता कब बैठ जाए, कब आएगा, कब आएगा, चलते 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 लगता है ना, एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है, यही इसकी प्रभास है। ठीक है,
जैसे जैसे जो आजकल जो दूसरी कंट्री से एक कंट्री में चले जाते हैं हवाई जहाज से या कैसे भी, अगर मान लो 100 साल 200 साल बाद अगर ये सब चीज़ें लुप्त हो जाती हैं, तो उस समय में लोग आश्चर्य करेंगे कि पहले के लोग कैसे इतनी जल्दी जल्दी आ जाया करते थे दूसरी स्टेट।
ये तो खैर साइंटिफिक व्यू हो गया,
ये स्पिरिचुअल हो गया, वो साइंटिफिक है, इस तरीके से उसको,
हाँ हाँ, जो चीज़ें कुछ पहले की, जैसे अर्जुन जो थे वो अग्नियास्त्र बोलते थे, अग्नियास्त्र उसके हाथ में आया था चला देते थे, अग्नि चारों तरफ गिर रही है, अब हम लोग समझते थे कैसे है, आजकल बम बटन दबाया परमाणु बम फूटा आ गया, आज साइंस है, ग्रॉस साइंस है, पहले सटल साइंस था, सूक्ष्म था, पहले मन से सोचते थे ज्ञान प्रकट हो जाता था, है ना। साइंस से बताता है मन इतना पावरफुल है, चाहे तो मन से एक टावर भी हिला सकते हो, अगर मन इतना शक्तिशाली हो, लोग अपने जमीन से उड़ते नहीं, होगी लोग जमीन से उड़ जाते हैं, कैसे उड़ जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, शरीर हल्का कैसे हो सकता है, सोचो गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसकी विरुद्ध कार्य करने लगती है, गुरुत्वाकर्षण के नीचे खींच रही है आपको, शरीर ऊपर उठा रहे मन से, आपने कोई लिफ्ट नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, व्यक्ति छोटा बन घुस जाता था, योगी शक्ति तो बहुत ही है ना, अध्यात्म की बात ही नहीं कर रहे अभी, यौगिक शक्ति तो और क्या है, बहुत ही है, छोटा बनना बड़ा होना ये यौगिक शक्ति है, ये भौतिक संसार का अष्ट सिद्धियां जो है ये भौतिक संसार की है, आध्यात्मिक संसार में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे देवता लोग हवा में उड़ते हैं, क्या यौगिक शक्तियां उनके अदृश्य हो जाते हैं, यौगिक शक्ति है, लेकिन है कहाँ, इस भौतिक संसार में, छोटे प्लैनेटरी सिस्टम कहाँ है, इस ब्रह्मांड में तो है, वहां के यान होते हैं, हवा में उड़ते हैं, वहां का जैसे एरावत हाथी है हवा में उड़ता है, यहाँ के हाथ उड़ेगा, हवा में ले जाओ छोड़ दो 50 लोग मर जाएंगे नीचे तक के, नहीं तो फिर ये कोई लॉजिक ही नहीं। तो वो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, जब दिखता नहीं तो मानते नहीं है। और उदाहरण, महाराणा प्रताप का जो ढाल है 80 किलो का, जब उसको म्यूजियम में इधर उधर सरकाना होता तब 4-5 लोग उठा के सरका सकते उसको, तो लोग बोलते हम बना दिया होगा ऐसे ही बोल रहे हैं, महाराणा प्रताप थोड़ी उठाते होंगे उसको, लेकिन जमाने के लोग उठा लेते थे। मुझे याद मेरे नाना जी थे, वो भालू से लड़ लेते थे, उसको गमछे से बांध देते थे, बड़ा गमछा होता था उसका हाथ बांधने में, पेड़ वो खेत में आके ना वो करता था, गंदा कर देता था खेत को पूरा, तहस नहस करता था। मेरे पापा बताते हैं कि गांव में ना उनको जैसे छोटा सा छड़ी लेके बच्चे दौड़ाते थे भालू को, भालू भाग जाते पहाड़ आसपास, भालू रात को अभी भी आ जाते हैं कभी कभी बरगद के बीज खाने के लिए। तो अभी तो सब बच्चे डर हो गए, घुस जाते हैं कमरे में, रात को कोई बाहर सोता नहीं है। लेकिन पहले बताते थे रात को ना बच्चे जैसे कुत्ते को दौड़ाते नहीं है, कुत्ता भागता है गाँव में, बच्चे ऐसे दौड़ाते थे छोटे छोटे बच्चे भालू को, लड़ जाते थे। जैसे सुना हो पुराने जानवर शेर से लड़ जाते थे, आजकल शेर देखे सब भाग जाएंगे, बिना बंदूक को ही जाता है जंगल में, पहले लोग शेर से लड़ जाते थे। अब बुरारी चेतन जब अब जाएंगे मोदा द्वीप में है, शेर को थप्पड़ मारते शेर बेहोश हो जाता था, सांप को लपेट के ना गांठ बांधते थे। सोच के देखिए इतने बहादुर थे। मुरारी चेतन को बताते हैं, चेतन जो मुरारी थे, मुरारी वो थे, उन्होंने क्या किया, सारंग मुरारी नाम के थे, उन्होंने क्या किया, उनके चेतन वहां बोलते थे कि जब भी तुम दीक्षा दो शिष्य बनाओ, शिष्य नहीं बनाते थे। तो एक बार बोले कि मैं आदेश देता हूँ तुमसे शिष्य बनाओ, तो बोलते ठीक है, बोलते कल जो तुम्हें पहला व्यक्ति मिलेगा उसे शिष्य बना लेना। उस स्नान करना जाता था, मुर्दा मिलता है, मुर्दे को बोलता चलो उठो, उठ जाता खड़ा रहता सोच, और उसको हरे कृष्ण मंत्र दीक्षा दे देते हैं, तो वही जाके आके चैतन्य बनते हैं, मुरारी चैतन्य का नाम पढ़ता, सारंग ठाकुर थे मुरारी नाम पढ़ता उनका। अब समझ रहे बात को, तो ये अद्भुत बातें हो सकती है आध्यात्मिक जीवन में, यह लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारा आध्यात्मिक कंटेंट है नहीं, भौतिक संसार के योगी कर सकते हैं। मुरारी सारंग मुरारी थे, सारंग ठाकुर थे, उन्होंने दीक्षा दी, उनका नाम पड़ा मुरारी, सारंग मुरारी नाम पड़ा उनका, क्योंकि सारंग के गुरु थे। और हो गया, हम पिछली बार चर्चा किए थे कि किस प्रकार द्वेष रहित होगी, हम क्या कर सकते हैं, धाम में निवास कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, कैसे द्वेष रहित हो। द्वेष रहित होने के लिए मैंने उपाय बताया था, आपको याद होगा, द्वेष से कैसे रहित हो सकते हैं, गुणगान किसका, अपना, जिसे हम द्वेष करते हैं उसका गुणगान करना पड़ेगा। या एक भक्त ने पूछा, बोझी जब कोई हमसे द्वेष करता तो क्या करना चाहिए। अच्छा प्रश्न, कोई हमसे द्वेष करे, हमें पता चला हमसे द्वेष करना है तो क्या करना चाहिए उसके लिए, पहले पता चल रहा है कि मुझसे कोई व्यक्ति द्वेष करता है तो उसके प्रति क्या भाव होना चाहिए आपको,
दोष करने वाले की प्रशंसा करना चाहिए,
दोष हमें निकालने वाले को
प्रशंसा करना,
वेरी गुड, और हाँ उसके अंदर द्वेष कहाँ से आया, हमारे कारण से, हमने कुछ ऐसा किया है, हमने ऐसा कुछ कर दिया है,
क्या पता कोई हम मान लो बहुत अच्छा लेक्चर करते हैं, हम तो उसके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे, वो
कुछ तो भाव आपका ऐसा था, क्योंकि लेक्चर अच्छा करने से तो आपको खुश होना चाहिए था, है ना, मैं सपोज मैं लेक्चर अच्छा कर रहा हूँ तो आपको बहुत आनंद आना चाहिए, आपको मेरे से प्रति प्रेम हो जाना चाहिए, द्वेष क्यों आ रहा है, कहीं ऐसा कुछ बात बोल दिया जो ऐसी उसकी बात को ठेस लगी, उसे जाके माफी मांगना चाहिए, मतलब जैसे लगता है मुझे मैंने कुछ कर दिया, तो बोले यार मैं तो उसको गलत समझता था, उसके द्वेष को शांत करने के लिए उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था संत तुकाराम को, एक वहां के पंडित पुजारी थे, जब पुजारी के पास उसके अनुयायी उनके पास नहीं जाते थे, वो क्या करते थे, संत तुकाराम के पास जाते थे, तो उनको बहुत क्रोध आने लगा कि मेरे अनुयायी जब संत तुकाराम के पास जा रहे हैं, तो बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने संत तुकाराम को क्या किया, कांटों की छड़ी से बहुत मारा, मार के खून निकाल दिया, और बंद भरा करके छोड़ के चले गए क्रोधित होकर। तो संत तुकाराम घर गए तो उनके पति ने बोला आज क्या हो गया, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ होता था, तो बोले कि मुझे मैंने गिर गया किसी गड्ढे में, बोले गड्ढे से गिरने से ऐसी चोट थोड़ी आती है, बोले क्या करूँ कांटों से भरा गड्ढा था, गिर गया, नहीं बताते कि वो ब्राह्मण ने मुझे मारा था। और दूसरे दिन थोड़े स्वस्थ होते हैं तो सुबह उठ के सबसे पहले घर जाते हैं, नॉक नॉक खटखटाते हैं, थोड़ा जब खुलते हैं चरण पकड़ लेते हैं, बोलते जरूर मैंने आपको कुछ आपके अंदर क्रोध उत्पन्न किया था, मैंने से कोई क्या कार्य किया है जिसकी वजह से आप क्रोधित हो रहे मुझ पर, इसका भी श्रेय मुझे। ये है ह्यूमिलिटी, ये है विनम्रता। तो उसके हृदय पिघलना था, बोले क्या आदमी है, मुझे इतना मारा हूँ और उससे माफी मांग रहा है, हृदय सचमुच संत है। तो प्रेम से ही किसी के अंदर हृदय से द्वेष चेंज कर सकते हैं ना, किसी के अंदर किसी का द्वेष है, किसी के प्रति द्वेष है, जब आप उससे और प्रेम करोगे तो द्वेष खत्म हो जाएगा। आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल होना चाहिए, जबरदस्ती एक्टिंग करना उसके सामने जाके भी नहीं, सचमुच हृदय से प्रेम होना चाहिए उसके लिए, सचमुच उसके अंदर उसकी सहायता करनी पड़ेगी, उसका सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके उसके अंदर क्या होगा, द्वेष खत्म होगा। द्वेष को तो खत्म करना है ना हमें, ऊपर जी हमसे द्वेष करता है तो और द्वेष बढ़ा दो उसका। बाली जी कोई कीर्तन करता है उसको देख आपको द्वेष आता है, ठीक है, और आपको सामने दिखा दिखा के कीर्तन कर रहे हो तो क्या होगा, द्वेष बढ़ेगा ना उसके अंदर, है कि नहीं। द्वेष को तो खत्म करना है, तो जब उसकी सेवा करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, उनकी पैसिफाई करेंगे, तो अपने आप शांत हो जाएंगे, फिर आनंद का आपको भी कीर्तन करने में अच्छा लगेगा। बिना रीजन को कोई द्वेष नहीं कर सकता,
नहीं होता ऐसे,
आपको लगता है, हमें लगता है कोई रीजन नहीं होगा, आप ढूंढेंगे तो कारण मिलेगा, कारण तो होता है। द्वेष का लेक्चर होता है उसमें बताऊंगा कभी आपको, उसमें कई कारण होते हैं, जैसे उसको बोलते हैं पोजीशन, पद का भय, मेरा पद ना चल रहा है, सम्मान का भय, सम्मान जो मिल रहा है वो बंद ना हो जाए, कभी होता है जो सम्मान आपको मिल रहा है, सीनियर है, उम्र में बड़े हैं, या किसी धन का, वो सम्मान का भय रहता है, तो दूसरे को देखते हैं दूसरों को सम्मान मिल रहा है तो उसे ईर्ष्या करते हैं कि इसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे को मिलता था, पद का रहता है, फिर सोचता है कि तीसरा बात है कि वो सोचता है कि मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो उत्तम हूँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा ऐसा, मैं कीर्तन करता हूँ तो वो कैसे कीर्तन कर रहा है आजकल, मैं डीटी वर्शिप करता हूँ वो डीटी वर्शिप कैसे कर रहा है आजकल, क्योंकि बेहतर अच्छा वो कर ही नहीं सकता कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सेंटर अच्छा चला लेता हूँ, वो क्यों आगे आगे बढ़ के आगे आ रहा है ना, तो उसको भय रहता है, तो इस कारण से वो क्या करता है, उसके अंदर द्वेष निकालने लगता है। जैसे मुझे याद है मैं कॉलेज में था, एक मेरा मित्र था, वो हाफ पैंट पहन के ना मार्केट निकलता, आजकल तो हाफ पैंट पहनना आम बात है, पर हमारे कॉलेज के समय भी हाफ पैंट पहन कर अब बाहर निकल नहीं सकते सड़क पर, हंसते थे लोग, तो उस समय नया नया फैशन आया था, तो वो हाफ पैंट पहन के जैसे निकलते थे तो मैं उनसे बोलता था कि तुम हाफ पैंट पहन के क्यों निकलते हो, फिर डांटता था, फिर वो फुल पैंट पहनता था, तो उसने एक युक्ति निकाली, हाफ पैंट पहन के जब भी ये निकलेगा बाहर तो सबसे पहले मेरे अंदर दोष निकलेगा, निकलते साथ ही, भले तू क्या कर रहा है यहाँ पर, पढ़ाई तो किया नहीं सुबह से, क्या कर रहा है तू, तो मेरा दिमाग भटक जाए किस पर, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, हाँ सच मैंने पढ़ा नहीं है, मैं उनके अंदर ये चीज़ उसका करेक्शन नहीं कर पाऊंगा। तो जब हमारे अंदर कोई कमी रहती है, कमी को छुपाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोष निकालो सब पर, है ना। मैं मान लीजिए सपोज प्रोग्राम में लेट आया, मंगल आरती में लेट आया, और आते बोल क्या है, सब क्या हो रहा है, अगरबत्ती कहाँ है, तुलसी जी कहाँ है, सबको से डांटने लोगों सपोज, तो क्या होगा, आपका ध्यान भटक जाएगा ना, भटक जाएगा ना, अभी नहीं बोलोगे प्रभु जी लेट आएंगे, समझे मैं। तो कभी कभी कमी छुपाने के लिए भी दूसरे में दोष निकाला जाता है, मेरी कभी छुपाने के लिए दूसरे में दोष, आपके यहाँ दाग लगा हुआ है, बोलते आप नहाए हो, ना के नहीं आया हो, बिल्कुल वो ही जाना चाहिए, सोचे कह रहे मैं तो सही में ना के नहीं आया हूँ, पहले बोलूँगा कि इनके गाल में दाग लगा है, अजीब बात लगेगी ना, मैं तो खुद ही नहाया नहीं, तो विनम्र होकर दूसरा वक्त चुप हो जाता, इसलिए दोष भी निकालता। तो चार कारण होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम अभी एक एक्टिविटी करेंगे, जैसे पेंडिंग था हमारा कि हम एक दूसरे का गुणगान करेंगे, ठीक है, इंस्टेंटली, पहले तो लिखने का मौका दिया गया था आपको, अब लिखेंगे नहीं, इंस्टेंटली जिसको भी देखेंगे हम लोग, कम से कम पांच लोगों का गुणगान करेंगे हम, ठीक है, फिर देखते हैं कौन क्या गुणगान कर पाता है नहीं, क्योंकि हम लोग गुण देखा है, हम लोगों ने पूरे वीक में याद किया गुणगान दूसरे का, हाँ रियल रियल ऐसे नहीं कि आपके मुख जो है कमल के समान है, शरीर से सुगंध की धारा बहती है, एक दिव्य ज्योति निकल रही है आपके शरीर से, आप अद्भुत हैं, ऐसा नहीं, जेन्युइन जो गुण है वास्तविक गुण है, कई भक्तों में गुण है, जैसे कृष्ण भगवान के अंदर क्या गुण है, पंक्चुअलिटी, टाइम के बड़े पाबंद, एक गुण सब मानना पड़े है ना, वैसे ही जिसके अंदर जो गुण है वो बताइए, तब क्या होगा उसको भी वो भी रिकग्नाइज कर पाएगा, अरे लोग वॉच करते हैं गुण को और आप भी वॉच करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो हम लोग करेंगे, मैं बेल बजाऊंगा, और पहले भी किया हमने एक्टिविटी को याद होगा, लेकिन उस समय आप लोग तैयार नहीं थे, तो उस समय आप लोग गुड़गान जब करने जा रहे थे तो मुझे बहुत बढ़िया है ना, अच्छा मौसम आज तो बहुत बढ़िया है, समय हो गया तो बड़ा एक मिनट लंबा नहीं है कुछ ऐसा होता है क्योंकि शब्द नहीं कभी देखेंगे, और अगर जानी दुश्मन सामने आ गया दाई गोर प्रेमानंद है फिर तो गुणगान में बोले स्वस्थ रहते हैं, प्रभु जी एक मिनट माता हूँ वॉशरूम से, वो खड़ा वॉशरूम में तैयार कर रहा है, वॉशरूम में दो मिनट लगा दिया गया, टन बज गया दूसरा आदमी, ठीक है, तभी हम लोग कह रहे हैं गुणगान, माता जी में कितने लोग हैं, दस दस, वाह क्या जोड़ी है भाई, दो दो की जोड़ी, और जो लोग कितने हैं, पांच पांच दस ग्यारह बारह जा रहे हैं, हरि बोल वापस आओ, क्यों पहले ही सोच करने जा रहे, ओके तो करना क्या है, मैं जब पहली बार बेल बजाऊंगा तो आपका क्या करना है, नहीं मैं थोड़ा लंबा बेल बजाऊंगा ताकि समझ में आए डिफरेंस, तो आप क्या करोगे, व्यक्ति चुन लोगे, ठीक है, और मैं मेरे पास टाइमर है, मैं टाइमर से देखूंगा कि एक मिनट तक आपको गुणगान करना है, ठीक है, तो मान लीजिए उदाहरण के लिए राजेश प्रभु और चांदमय प्रभु ग्रुप के एक अभी इकट्ठा हुए, ठीक है, फर्स्ट टाइम में सब लोग ऐसा हो चुके, पर इन दोनों सामने आए, तो मैंने जब लॉन्ग बेल बजाया था आपने चुन लिया उनको, तो आप ए हैं ये बी है, मान लीजिए ए जब बी का गुणगान करेगा तो बी को चुपचाप सुनना है, सिर्फ सुनना है, आगन उठाना है, वाह आनंद, ठीक है, फिर मैं जब बेल बजाऊंगा छोटा वाला तो चेंज, अब बी गुणगान करेगा ए का, ए को चुपचाप सुनना है, ठीक है, एक मिनट तक इस प्रकार दो मिनट गुजर जाएंगे, फिर मैं लॉन्ग बेल बजाऊंगा, आपको व्यक्ति चेंज कर दूंगा, आप चांदोमय प्रभु जी मान लीजिए, कैलाश प्रभु के पास चले गए, राजेश प्रभु मान लीजिए अपने ब्रदर के पास चले गए, ठीक है, तो आप चेंज हो गया, तो आप फिर आप ए व्यक्ति बी का करेगा, राजेश प्रभु अपने ब्रदर का करेंगे, प्रभु जी आपका नाम क्या है, राकेश, राकेश राजेश, राकेश प्रभु फिर अगली बार छोटा बेल बजाऊंगा तो चेंज कर देगा, क्लियर, समझ में आया प्रभु आपको, पीछे समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो पूछिए, आ गया, किसको समझ आपको समझ में आया, पीछे माता जी से किसको समझ नहीं आया, क्लोज बनाने का प्रयास कीजिए, मतलब क्लोज नहीं रहते हैं, क्लोज रहिए, प्रभुपाद जी से कितने लोग मिले आप लोग, प्रभुपाद से कितने लोग मिले, कितने गुण है, आप एक घंटा बोल सकते हो प्रभुपाद जी के बारे में, नहीं प्रभुपाद महाराज से नहीं मिले, मोहन रूप से कितना मिलता, ऐसा जरूर नहीं, क्लोज में रहता हूँ मच्छर भी आपको काटता रहता है ना, बाथरूम में गुणगान कीजिए, रोज जाते हैं वहां पर, करो गुणगान, जिसका गुणगान करना है वो कहीं भी रहेगा गुणगान कर दोगे, गुण को देखना आना चाहिए बस, कभी कभी तो अनजान व्यक्ति गुणगान कर देता है, थोड़े देर में मिलता है और उसमें गुणगान कर देता, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, बस में चढ़ा उठा बैठा, तो बोले आप, आपका ड्रेस सेंस अच्छा है, आप बैठते हैं बड़े अच्छे से, आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, आपकी वाणी अच्छी है, आपका आवाज अच्छा है, दो मिनट लगता है कुछ चेक करने में, नहीं और सालों साल लग जाते हैं गुण देखने में, कभी कभी द्वेष करते तो कुछ दिखते ही नहीं है, हाँ जैसे भक्त बहुत बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ लेकिन मंगल आरती कहाँ आता है? अब ये तरीका देखने का, कहाँ आता तो ठीक है, मंगल आरती नहीं आता लेकिन, तो ये भावना है। लेकिन शब्द जो है ना वो क्या दिखाता है, द्वेष। लेकिन श्रृंगार तो बहुत अच्छा है, लेकिन गाते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छे करते हैं, लेकिन लेकिन क्यों आ रहा है? अच्छा करते हो, अच्छा बोलते जाओ बस, ठीक है। तो सब खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, कि बैठे बैठे सरकना मुश्किल होगा, आनंद आएगा। आपको कम से कम 5 लोगों से मिलना है आज, ठीक है, यहीं पर, ठीक है, बड़ा आनंद आएगा। 5 लोगों से मिलना है तो कितना मिनट लगेगा? 5 दुनी, ठीक है। तो तैयार हैं सभी लोग? सब अपने स्थान पर कर जाइए। हाँ जल्दी से ढूंढ लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। तीन लोग नहीं, दो दो लोग, तीन लोग नहीं, दो दो, दो और दो। एक मिनट होगा तो बजाऊंगा, चिंता मत कीजिए, तब तक गुणगान करते रहे। अभी एक ही व्यक्ति गुणगान करे, अभी चेंज नहीं हुआ कभी। ओके, अब ये करेंगे गुणगान। ओके, चेंज कर लो, पर्सन चेंज कर लीजिए।
Thank you. Thank you.
कितने हुए, चार हुए तीन हुए, लास्ट है ना लास्ट, जल्दी चुनिए अपने पार्टनर को, जल्दी से पढ़ा हो जिसके पास सब नहीं है। अच्छा घर में तारीख बैठ जाइए सब लोग दो मिनट के लिए। दो मिनट बैठ जाइए फिर बैठो बैठो। कैसा लगा तुम्हें, कैसा फील हुआ? गुणगान करके अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है? कुछ लोग कई लोग रो रहे हैं, अद्भुत। क्या सीन है, अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा?
जब थोड़ी देर के लिए एहसास हुआ गुरु जी, तो वो आनंद ऐसे महसूस कर रही थी मैं, ये हमेशा क्यों नहीं बना रह सकता?
कर सकते हैं, अब हमेशा तारीफ करेंगे। हर किसी का गुणगान करिए, आप कितना अच्छा लगे हृदय में, इतनी शांति मिलेगी, इतना खुशी आपको कभी नहीं मिला। आपने महसूस किया थोड़ी देर में किसी के गुणगान करने से इतनी खुशी मिलेगी, कभी सोचा था आपने? जो आज महसूस किया अपने अंदर में,
इतना तो खुशी हमारे गुणगान में।
हाँ
गुणगान करते हैं ना, दूसरा व्यक्ति जो होता है बहुत खुश होता है, तो उसकी खुशी को देख करके हम लोग बहुत खुश आनंदित।
हाँ, दूसरा चीज, एक चीज और रिकॉग्नाइज किया होगा, लोग कितने बारीकी से हमारे गुण को देख रहे हैं। महसूस किया कि अरे अच्छा ये वॉच करते हैं, कोई ये देखते हैं, मुझे पता नहीं था, ऐसा लगा, महसूस हुआ गोविंद प्रभु। आपके किए कि नहीं गुणगान? किया, आपने किया गुणगान लोगों का?
वेरी गुड। लग रहा था कि बहुत बड़ा बोझ हमारे सिर के अंदर था,
हाँ
कंधे पे था, वो उतर गया,
उतर गया, उतर गया। गुणगान करना बहुत अच्छा एक्टिविटी है, आप हमेशा कीजिए गुणगान। आप हमेशा जो सुख सुखी रहना चाहते हैं ना, जो भी मिले उसको गुणगान करो, आप सुखी हो जाओ।
किसी के प्रति जो दिल में कहने के लिए होता है, कह नहीं पाते तो वो मतलब कह दिया, तो खुशी भी हुई, हल्कापन भी
हुआ।
अपना सुनने में अपना नहीं होता, उसमें तो श्रम सी आती है, अपना सुनने में, बोलने में जो दिल में है तो वो अच्छा लगता
है। राधानाथ महाराज बताते हैं, जो ये बोलता है कि मुझे प्रेम नहीं करता, उसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है। अगर आप सबसे प्रेम करोगे तो आपको लोग सब प्रेम करेंगे। जैसे हमारे मंदिर में अक्षय केशव हैं, वो सबकी सेवा करते हैं। जब बीमार थे ना तो उसको परेशान कर दिए लोग, उसके पास आ गए, मुझे कैसे हो, क्या ला दिया उनके लिए, क्या कर दे, इतने सारे प्रसाद, इतनी सारी मिठाइयाँ सब ला लगे दी जा रहे, बोले मैं क्या क्या खाऊँ समझ नहीं आ रहा, इतना लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेवा सीखी है। आप जब सबसे प्रेम करोगे तो लोग आपके पास, इतने लोग प्रेम करेंगे आपको, प्रेम शिकायत ही नहीं मिलेगी। हमारी शिकायत क्यों? क्योंकि हमने किसी से प्रेम किया ही नहीं, किसी को प्रेम दिया ही नहीं। संसार में जो दोगे वापस आ जाएगा, पक्का है। आध्यात्मिक लोग का वातावरण कितना, आपने जो 10 मिनट का आध्यात्मिक वातावरण था, ऐसा होता है आध्यात्मिक वातावरण जो 10 मिनट का था? नहीं तो हम लोग अपने अपने कोने में खड़े हैं, अपने अपने टापू पर, अपने अपने एजेंडे पर, तो उसमें कितना कष्ट था उसमें ना। जब आप द्वेष देकर चलते हैं ना तो कष्ट आप ही होता है।
लगा
मुझे
10 मिनट है, जब आप बोल रहे
थे
ना
10
मिनट करना है
लगेगा,
तो
10
मिनट उस टाइम
लगा था कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जहाँ लोग बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं तो मैं 1.5 मिनट में घंटी बजा रहा था, 2 मिनट में घंटी बजा रहा था।
जिसमें जब हमें ग्लोरिफिकेशन करना है, एक्चुअली हम ऐसा मूड बनाते हैं कि उसमें दोस्त निकालना है।
हाँ, तो अच्छा बनाने का दिखा,
मन में ये इच्छा रखे कि सबका मैं गुण देखूं तो फिर दोस्त कभी नहीं दिखेंगे।
सही बात। कृष्ण भगवान को आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसा लगा? अच्छा लगा।
जब तक कृष्ण भगवान को डांट नहीं मारते हैं
तब तक लगता नहीं कोई अपना भी बोल रहे हैं ना, पिता का जैसे। याद है मुझे जब यहाँ पर VFS का हुआ था इनॉग्रेशन, याद है मुझे उस दिन श्री सीता माता जी और अनुराधा माता जी आई थी, तो प्रभु जी ने उनको सब्जियाँ वब्जियाँ खरीदवाई, सामान खरीदवाया, कर बोले हम देखना चाहते हैं, उन्होंने दिखाने के लिए गए और खरीदवाया भी। तो वो लोग बोल रहे हैं प्रभु जी हम लोग के मेरे पापा दूर हैं, पापा लोग दूर हैं, लेकिन ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, पहली बार मिलने लगे ऐसे लग रहा है कि पापा सब्जी खरीदवा रहे हैं। तो इन्होंने अपना प्रेम दे दिया ऑटोमेटिकली, तो पीछे से वो दे रहे हैं अपने आप, नेचुरली होता है। वो गुणगान पीछे क्यों कर रहे हैं, अच्छा लगा तभी ना। तो इन्होंने निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया उनको, तो वो लेके गए और बांट रहे हैं वहां पर। और एक और फंक्शन है, जैसे आज आपने जिनका गुणगान किया ना, वो जाकर किसी ने किसी गुणगान करेंगे, पक्का है। और जिसका गुणगान करेंगे वो किसी गुणगान करेगा, इस तरह से पूरा समाज एक दूसरे गुणगान करता रहेगा, निंदा खत्म हो जाएगा समाज से। यही तरीका है सुर को वृंदावन बनाने का, मेरा दानवास क्या है, अब नरकवास है, एक दूसरे की निंदा करेंगे, ठीक है। तब के बाद फिर एक्टिविटी करेंगे, अब नए गुणों को खोज के आना। हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीका यही है, कम से कम हम अच्छे गुणों को देखना शुरू करें। भौतिक गुण भी किसी के अंदर देख लो बहुत है ना, भौतिक गुण भी देखना बहुत बड़ी बात है, भौतिक गुण भी देख पा रहे हैं, आध्यात्म तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बोलिए। घर वालों भी दोस्त देखते हैं, और उनके अंदर भी हम दोस्त देखते हैं, इसलिए उनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। सबके अंदर गुण है, उनके अंदर अच्छा ही गुण देख कर गुण देखने से कैसे देख, आप देखते हैं ना, आपके अंदर रहता है, उल्टा कैसे सोचेंगे। ऐसे ठीक है, उनको बोला आप ठीक हो। अगर आप किसी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, उनको बोल दो ठीक हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे हम माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान के भक्त हैं, इनकी उम्र निकल गई, वहाँ जाते हैं।
इनकी
उम्र निकल गई, उम्र
बोला ठीक है, उनकी उम्र
इस तरह की भावना रखते हैं। कौन से थे, कैसे
बोला ठीक है, हमारी उम्र हो गई बस, क्या उसमें समस्या क्या है? आप उनकी बात मान नहीं रही, समस्या है। आप बोले नहीं, हमारी उम्र कहाँ हो गई है, समस्या ये है ना, इसलिए दुख हो रहा है। बोले ठीक है, आप बूढ़े हो गए, ओके, समस्या ही नहीं कुछ। जब कोई बोले तो बेवकूफ, वहां हम बेवकूफ, लड़ाई होगी नहीं, हम बेवकूफ कहाँ बोले तो लड़ाई होगी, हम पागल हैं। जैसे कोई किसी व्यक्ति के प्रेम में पागल होता है, दूसरे के प्रेम में पागल है, पागल है। समस्या ही नहीं, आप सोचे हम पागल नहीं है, फिर लड़ाई होगी।